ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कल पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ सकारात्मक बातचीत की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूती के संकल्प को दोहराया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में वर्तमान में सहयोग की समीक्षा की और आपसी द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के नए रास्तों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत को मॉरिशस के एक मूल्यवान और विश्वसनीय विकास भागीदार होने पर गर्व है और दोनों देश ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित भोज के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस भागीदारी ऐतिहासिक संबंधों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में भारत और मॉरिशस लोगों के विकास, क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इससे पहले कल रात मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस भारत के सागर विजन के केंद्र में बना हुआ है, जिसकी घोषणा पहली बार श्री मोदी की 2015 की मॉरिशस यात्रा के दौरान की गई थी। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस को भारत और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बताया है। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम, उनकी पत्नी और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने 30 मिनट के भाषण में भोजपुरी भाषा का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां की 70% आबादी भारतीय मूल की है, जो मुख्य रूप से भोजपुरी भाषी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू इस अवसर पर विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्रदान करेंगी तथा समारोह को संबोधित करेंगी। पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रेणु विग ने बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर के छात्रों को काम के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें वहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग द्वारा आयोजित युवा संसद में पूर्वोत्तर के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसका लाभ अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे मौजूदा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए डेयरी एनालॉग्स पर निगरानी बढ़ाएं। डेयरी एनालॉग्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें दूध आंशिक रूप से होता है या बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ये दिखने, बनावट और व्यवहारिकता में दुग्ध उत्पादों से मिलते जुलते हैं। डेयरी एनालॉग्स को दूध, दुग्ध उत्पाद या मिश्रित दूध उत्पाद नहीं माना जाता है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन उसके 30 दिन के तत्काल और अंतरिम युद्धविराम के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है और अब रूस को इसका जवाब देना है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया सूचनाएं देने पर लगाई गई रोक भी हटा ली है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के जेद्दाह शहर में यूक्रेन के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने कल जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला किया और उसे कब्जे में ले लिया। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी और उसकी 9 बोगियों में लगभग 500 यात्री सवार थे। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 11 रन से हराया। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन ही बना सकी। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।